एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंसान की उस एक आदत के बारे में जो उसे हमेशा से अज्ञात की ओर खींचती रही है। मेरा मतलब है खोज या अन्वेषण की प्रवृत्ति।
और ये आज के समय में बहुत दिलचस्प सवाल है।
हाँ, क्योंकि एक तरफ तो लगता है कि गूगल मैप्स पर दुनिया का कोना कोना देख लिया है, अब खोजने को बचा क्या है?
या शायद खोज का मतलब ही बदल गया है।
बिल्कुल। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए आज हम इतिहासकार स्टीवर्ट ए वीवर की दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों पर एक गहरी नजर डालेंगे।
पहली है एक्सप्लोरेशन, ह्यूमैनिटीज ड्राइव फॉर डिस्कवरी, और दूसरी एक्सप्लोरेशन, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और मैं ये बता दूं कि ये किताबें खोज के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती हैं।
अच्छा, मतलब जो हम स्कूल में महान खोजकर्ताओं की कहानियां पढ़ते आए हैं, ये उससे कुछ अलग है?
बहुत अलग। वीवर हमें इन सवालों को एक नए और शायद कुछ असहज करने वाले नजरिए से देखने में मदद करते हैं।
तो चलिए इस दुनिया की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल। और वीवर इस विषय पर बात करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। वो कोई भूगोलवेत्ता या खोजकर्ता नहीं है।
नहीं तो फिर?
वो रोचेस्टर विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, और उनकी खासियत है ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास।
एक मिनट, ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहासकार और वो खोज के बारे में लिख रहे हैं, ये तो थोड़ा अजीब लगता है।
या शायद इसी वजह से उनका नजरिया इतना अनोखा है।
हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
यही उनके काम को इतना शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वो खोज को सिर्फ एक साहसिक कारनामे के तौर पर नहीं देखते।
तो फिर वो कैसे देखते हैं?
वो उसे सत्ता, नियंत्रण और साम्राज्य के चश्मे से देखते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कोलंबस ने क्या खोजा,
बल्कि
वो पूछते हैं कि कोलंबस के वहां पहुंचने का असली मतलब क्या था और इसका दुनिया पर क्या असर हुआ।
ठीक है, तो फिर इन किताबों का जो मुख्य तर्क है वो क्या है? क्या वीवर ये कह रहे हैं कि खोज करना बस कुछ जुनूनी लोगों का काम था?
नहीं, नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। वो कहते हैं कि यह हमारे डीएनए में है, लेकिन जिस तरह से इसकी कहानी हमें सुनाई गई है वो बहुत अधूरी और अक्सर भ्रामक है।
अच्छा।
उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि खोज की रोमांटिक कहानियों को भूल जाइए। असल में खोज हमेशा से तीन चीजों से जुड़ी रही है।
कौन सी तीन चीजें?
साम्राज्य, वाणिज्य और विज्ञान। ये कभी भी ज्ञान की एक मासूम तलाश नहीं थी।
साम्राज्य, वाणिज्य और विज्ञान, ये तो खोज की पूरी छवि को ही बदल देता है।
और उनका सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे असहज करने वाला विचार ये है कि जिसे एक समूह खोज कहता है वो लगभग हमेशा किसी दूसरे समूह का घर होता है।
वाह, ये तो सोचने वाली बात है।
और ऐतिहासिक रूप से किसी नई जगह की खोज करना असल में वहां अपनी सत्ता स्थापित करने का पहला कदम था।
एक ही खोज दूसरे पर कब्जे की शुरुआत। चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ?
वीवर हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ले जाते हैं, जब हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर निकले। उस समय खोज कोई शौक नहीं था,
बल्कि एक जरूरत थी।
बिल्कुल, जिंदा रहने की जरूरत। नए संसाधन ढूंढना, शिकार के लिए नए इलाके खोजना, खतरों से बचना, ये सब अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा था।
तो ये एक जैविक जरूरत थी, लेकिन ये सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत से एक ग्लोबल इंडस्ट्री में कैसे बदल गई? मेरा मतलब है, पॉलिनेशन नाविकों तक हम कैसे पहुंचे?
बहुत अच्छा सवाल है। पॉलिनेशन नाविकों का उदाहरण कमाल का है। वो बिना किसी कंपास या जीपीएस के,
सिर्फ सितारों के सहारे,
हाँ, सिर्फ सितारों, हवाओं और लहरों को पढ़कर प्रशांत महासागर में हजारों मील दूर के द्वीपों तक पहुंच गए।
और उनकी प्रेरणा क्या थी?
सिर्फ खाना नहीं,
व्यापार, विस्तार और शायद एक आध्यात्मिक जिज्ञासा भी। ये दिखाता है कि खोज की प्रवृत्ति किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो शुरुआती इंसान जरूरत के लिए भटक रहे थे, पॉलिनेशन एक जिज्ञासा और व्यापार के लिए। लेकिन फिर हम क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा तक कैसे पहुंचे? उस दौर को तो महान खोज का युग कहा जाता है।
और वीवर इसी शब्द पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि इसे खोज का युग कहना ही एक धोखा है।
धोखा?
हाँ, वो इसे यूरोपीय साम्राज्यवाद का पहला युग कहना पसंद करते हैं।
एक मिनट, तो वीवर ये कह रहे हैं कि जिसे हम सदियों से खोज का युग कहकर गर्व करते आए हैं वो असल में एक तरह की यूरोपीय कल्पना है? ये तो बहुत बड़ा दावा है।
बिल्कुल, और यही उनके काम का सार है। उनका कहना है कि खोज शब्द ही समस्याग्रस्त है।
क्यों?
क्योंकि ये मानकर चलता है कि कोई जगह तब तक मौजूद ही नहीं थी जब तक किसी यूरोपियन ने उसे नक्शे पर नहीं उतार दिया।
मतलब ये उन लाखों लोगों के अस्तित्व, उनके ज्ञान और उनके इतिहास को ही मिटा देता है जो वहां पहले से रह रहे थे।
एकदम। इन यात्राओं के पीछे की असली प्रेरणा थी ईश्वर, सोना और महिमा।
ईश्वर, सोना और महिमा, मतलब ईसाई धर्म का प्रसार, मसालों और सोने पर कब्जा और अपने देश के लिए नाम कमाना।
जी, लेकिन वीवा का मकसद सिर्फ आंखना नहीं बल्कि समझना है। वो कहते हैं कि हमें इन यात्राओं के परिणामों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
और परिणाम क्या थे?
परिणाम बहुत क्रूर थे। अटलांटिक दास व्यापार की शुरुआत हुई और अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बीमारियां और हिंसा फैली, जिससे वहां की मूल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया।
तो ये खोज असल में विजय और शोषण की शुरुआत थी?
बिल्कुल।
ये तो बहुत ही अलग तस्वीर है। तो क्या ये सिलसिला आगे भी ऐसा ही चलता रहा, मतलब 18वीं और 19वीं सदी में?
तब ये और भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया। खोज अब बाकायदा साम्राज्य बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका बन गए।
इसका कोई उदाहरण?
सबसे बड़ा उदाहरण है कैप्टन जेम्स कुक। हम उन्हें एक महान नाविक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के एक बहुत ही कुशल एजेंट भी थे।
एजेंट मतलब उनकी यात्राओं का कोई छिपा हुआ मकसद था?
छिपा हुआ भी नहीं बल्कि दोहरा मकसद था। एक तरफ तो वो शुक्र ग्रह के पारगमन जैसी वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे,
और दूसरी तरफ
उनका असली काम था प्रशांत महासागर का नक्शा बनाना, ब्रिटेन के लिए रणनीतिक तौर पर जरूरी जमीनों की पहचान करना और उन पर ब्रिटिश झंडा गाड़ देना।
मतलब नक्शा बनाना कब्जे का पहला कदम था?
हाँ, बीवर यही कहते हैं।
ये कुछ ऐसा है जैसे आज कोई टेक कंपनी आपके डेटा का नक्शा बनाकर उसे अपने सिस्टम में शामिल कर लेती है। एक बार आप सिस्टम का हिस्सा बन गए तो आप पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है।
बेहतरीन एनालॉजी है, और विज्ञान का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। चार्ल्स डार्विन का ही उदाहरण ले।
हाँ, HMS बीगल की यात्रा और विकासवाद का सिद्धांत।
जी, पर क्या हम ये पूछते हैं कि वो जहाज वहां कर क्या रहा था?
नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा। उसका मुख्य मकसद क्या था?
उस जहाज का मुख्य मिशन था ब्रिटिश नौसेना के लिए दक्षिण अमेरिका के तटों का सटीक नक्शा तैयार करना। डार्विन का महान वैज्ञानिक काम उस बड़े शाही प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मात्र था।
अच्छा।
इसी तरह वनस्पति विज्ञान का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया गया कि कौन से पौधे एक उपनिवेश से दूसरे में ले जाकर व्यावसायिक फायदा कमाया जा सकता है,
जैसे भारत से चाय
या दक्षिण अमेरिका से रबर। यहाँ तक कि मानव विज्ञान का इस्तेमाल नस्लीय सिद्धांत बनाने के लिए किया गया, ताकि ये साबित किया जा सके कि यूरोपीय लोग दूसरों पर शासन करने के लिए ही बने हैं।
ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञान और खोज का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया। तो जब 20वीं सदी तक धरती के लगभग सभी नक्शे भर गए, तब क्या हुआ?
नहीं, बस खेल का मैदान बदल गया। अब नई सीमाएं थीं अंटार्कटिका के बर्फीले मैदान, माउंट एवरेस्ट की चोटियां, समंदर की गहराइयां और
बाहरी अंतरिक्ष।
हाँ, और मजे की बात ये है कि पैटर्न बिल्कुल वही रहा।
कैसे?
अंतरिक्ष की खोज में तो कोई कब्जा करने नहीं गया था, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन मंशा वही थी। अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए रॉबर्ट स्कॉट और रोवाल्ड अमुंडसेन के बीच की दौड़ सिर्फ एक साहसिक कारनामा नहीं थी।
वो क्या थी फिर?
वो ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की लड़ाई थी।
अच्छा।
इसी तरह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की दौड़ भी भू राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई थी। चांद पर झंडा लगाना एक वैज्ञानिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा एक राजनीतिक बयान था।
और आज भी हम यही देख रहे हैं, है ना? SpaceX मंगल पर जाने की बात कर रही है, देश गहरे समंदर में खनिजों के लिए होड़ कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो वीवर का तर्क ये है कि किरदार और मंच बदल गए हैं, लेकिन कहानी का सार वही है। राष्ट्रीय या कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा, वैज्ञानिक जिज्ञासा और अपार मुनाफे की संभावना।
तो अगर हम वीवर के काम के सार को कुछ मुख्य संदेशों में समेटे, तो पहला और सबसे अहम सबक क्या होगा?
पहला तो यही कि खोज की अवधारणा ही एक यूरोपीय केंद्रित कल्पना है। ये उन लोगों के अस्तित्व को मिटा देती है जो वहां पहले से मौजूद थे।
ठीक है, तो पहला बड़ा झूठ तो खोज शब्द ही है, और दूसरा?
दूसरा मुख्य संदेश ये है कि खोज हमेशा से सत्ता का एक साधन रही है। ये कभी भी ज्ञान की एक मासूम और शुद्ध तलाश नहीं थी।
इसे हमेशा से सरकारों और कंपनियों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक मकसद पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया है।
जी।
और तीसरा संदेश शायद उन खोजकर्ताओं की हीरो वाली छवि से जुड़ा होगा।
एकदम सही। तीसरा संदेश है कि खोजकर्ता नायक की छवि एक सोची समझी सांस्कृतिक रचना है।
मतलब
कोलंबस से लेकर कैप्टन स्कॉट तक इन लोगों को राष्ट्रीय हीरो इसलिए बनाया गया ताकि साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं को गौरवशाली दिखाया जा सके
और उनके क्रूर या स्वार्थी पहलुओं पर पर्दा डाला जा सके।
बिल्कुल,
वीवर की किताबों में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो दिमाग में अटक जाती हैं। कोई ऐसा विचार जिसने आपको खास तौर पर प्रभावित किया हो?
हाँ, कई हैं। एक विचार मुझे बहुत पसंद है। सबसे महान खोजकर्ता वो है जो केवल अनमैप किए गए क्षेत्रों में नहीं बल्कि मानव समझ की अनमैप्ड की गई संभावनाओं में उद्यम करते हैं।
वाह, ये तो बहुत गहरा है। मतलब असली खोज बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की सीमाओं को तोड़ने में है।
हाँ, गैलीलियो, डार्विन या आइंस्टाइन,
वो भी तो महान खोजकर्ता थे, भले ही उन्होंने कोई नया महाद्वीप ना खोजा हो।
बिल्कुल, उन्होंने हमें ब्रह्मांड और जीवन को देखने का एक नया नजरिया दिया। ये खोज का एक बौद्धिक रूप है।
और कोई यादगार विचार?
एक और है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। प्रौद्योगिकी खोज की पहुंच का विस्तार करती है लेकिन दिशा मानव जिज्ञासा ही तय करती है।
सही बात है। आज हमारे पास मंगल पर रोवर भेजने की तकनीक है लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो जानने की इच्छा है।
बिल्कुल, तकनीक सिर्फ एक औजार है, असली ताकत तो इंसान की नियत और जिज्ञासा ही है।
और वीवर के अनुसार वो नियत अक्सर मुनाफे और सत्ता से जुड़ी होती है। हा?
ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती। हम उसका इस्तेमाल ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं और शोषण के लिए भी।
चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम इन ऐतिहासिक सबकों का आज क्या करें?
सबसे पहले तो ये हमें आलोचनात्मक सोच सिखाता है। अब जब हम सुनते हैं कि कोई कंपनी अमेज़न के जंगलों में नए संसाधनों की खोज कर रही है
या कोई देश आर्कटिक में ड्रिलिंग कर रहा है,
तो वीवर का ढांचा हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है। इस मिशन के पीछे कौन है? उनका असली मकसद क्या है?
और किसकी कहानी नहीं सुनाई जा रही?
हाँ, वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का क्या?
ये बहुत जरूरी है। ये हमें वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। आर्कटिक में तेल के लिए जो होड़ मची है वो संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी होड़ का ही 21वीं सदी का संस्करण है।
और ये सिर्फ बड़े मुद्दों की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होता है।
कैसे?
ये हमें यात्रा करने का एक ज्यादा जिम्मेदार तरीका सिखा सकता है। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम खुद को एक खोजकर्ता समझने की गलती करने के बजाय एक मेहमान के रूप में देख सकते हैं।
एक ऐसा मेहमान जो स्थानीय संस्कृति, इतिहास और लोगों का सम्मान करता है।
बिल्कुल,
ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है सोच में, एक खोजकर्ता से एक मेहमान बनने का सफर।
तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी कि खोज की सरल रोमांटिक कहानी एक मिथक है
और असलियत कहीं ज्यादा जटिल, नैतिक रूप से धुंधली और सत्ता, लालच और साम्राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई है।
बिल्कुल, और मैं एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी। वीवर हमें चेतावनी देते हैं कि खोज कभी भी एक तटस्थ काम नहीं होता, ये हमेशा अपने समय के मूल्यों से आकार लेता है
और इसके अच्छे या बुरे परिणाम होते हैं।
जी, आज जब मानवता नई सीमाओं जैसे मंगल ग्रह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग की ओर बढ़ रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत के शोषणकारी पैटर्न को न दोहराएं।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी चेतावनी है और यह हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर खोज हमेशा सत्ता और लाभ से जुड़ी रही है तो क्या मानवता कभी विशुद्ध रूप से सिर्फ ज्ञान के लिए खोज कर सकती है? और अगर हाँ तो वह कैसी दिखेगी? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।